नमस्कार भारत, 3 अक्टूबर बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। दिल्ली यूपी की सीमा पर रोके गए किसान मांगों को लेकर आज करेंगे राजघाट जाने की कोशिश।
राजघाट चले जाएंगे, मार्च खत्म हो गया हमारा, हम शांति से वहां पर जाएंगे, वहां पे समापन कर अपने घर चले जाएंगे।
मध्य प्रदेश में सवर्ण आंदोलन को लेकर चर्चा में आए सपाक संगठन ने बनाई राजनीतिक पार्टी।
बहुत जल्दी जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और सभी 230 सीट पे चुनाव लड़ेंगे।
नशे की समस्या से जूझ रहे पंजाब में उठी अफीम को कानूनी वैधता देने की मांग पर भी सुनाएंगे रिपोर्ट। होगी अखबारों की समीक्षा और खेल के समाचार भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। न्यूयॉर्क के कर अधिकारियों का कहना है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 1990 में अपने परिवार को लाखों डॉलर की कर चोरी करने में मदद की। ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मां बाप ने उन्हें और उनके भाई बहनों को लाखों डॉलर दिए थे, जिस पर उन्होंने कर नहीं दिया। हालांकि उस रिपोर्ट पर अब तक व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ट्रंप के वकील का कहना है कि राष्ट्रपति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। रूस ने नेटो में अमरीका की दूत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका रूस के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान देने से पहले लोगों को सोच लेना चाहिए कि उन्हें भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले अमरीका की दूत ने कहा था कि अमरीका राजनयिक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन 1987 की संधि के बावजूद अगर रूस मीडियम रेंज सिस्टम विकसित करता है तो अमरीका सैन्य हमला करेगा। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आए सुनामी और भूकंप को 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी बचाव टीमों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आपदा में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ ट्रक खाने पीने का सामान लेकर पालू पहुंचे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। भूस्खलन और बिजली बाधित होने की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 2 लाख लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर रहे जेन एजलेन कहते हैं,
I cannot see anywhere on earth that the first 48 to 72 hours
शुरुआती 48 से 72 घंटों तक स्थानीय लोगों ने ही हालात संभाले। मैंने दुनिया में कहीं भी और ऐसा होते नहीं देखा। स्थानीय लोगों ने कई लोगों की जानें बचाई हैं। सुनामी और भूकंप की वजह से हवाई अड्डे, रोड और संचार सेवाएं बाधित हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने में मुश्किल हो रही है। 5 दिन बाद अब जाकर कहीं अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंच पाई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारी गजा में 2 दिन की हड़ताल पर हैं। ये लोग फंड में कटौती और नौकरी से निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने गजा को दी जाने वाली सैकड़ों डॉलर की मदद को रोकने का फैसला किया था, जिसके बाद से UNRWA के फंड में कटौती कर दी गई। नाराजगी बढ़ते देख एजेंसी ने अपने कई विदेशी स्टाफ को गजा से वापस बुला लिया है। एजेंसी की ओर से दी जाने वाली मेडिकल सुविधाएं रोक दी गई हैं, साथ ही स्कूल भी बंद रखे गए हैं। इन स्कूलों में करीब 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। नौकरी खोने वाले यासर अल घमर कहते हैं, ये हड़ताल प्रशासन को संदेश देने के लिए की गई है। हम लंबे समय से प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। ये थे यासर अल घमर के शब्द। अमेरिका के रक्षा विभाग में किसी ने 2 पार्सल भेजे हैं, जिसमें जहरीला पदार्थ रायसिन पाया गया है। FBI ने पार्सल को जांच के लिए भेज दिया है। इन लिफाफों को रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस और नौसेना प्रमुख के लिए भेजा गया था। पेंटागन का कहना है कि उन्होंने अपने पार्सल विभाग को फिलहाल सील कर दिया है। रायसिन बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। ये अरंडी की फलियों से निकलता है। इसका पाउडर गोली या एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कल अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को उत्तर प्रदेश के साथ लगती सीमा पर रोक दिया गया। इसके लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, मगर किसान अभी भी वहां जमे हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि उनकी किसान क्रांति यात्रा लगभग पूरी हो गई है, लेकिन वो आज राजघाट जाने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन के नेताओं ने कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
कल दिल्ली से सटी सीमा पर किसानों का हाई वोल्टेज प्रदर्शन हुआ। इस दौरान उनके दिल्ली की सीमा में घुसने के प्रयास के दौरान दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शन के बाद घटनास्थल पर जाकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से बात की और उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से मुलाकात के बाद उनकी आधे से अधिक मांगे मान ली हैं।
किसानों के प्रतिनिधियों से माननीय राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में उनकी अध्यक्षता में बैठक करके बातचीत हुई है। जो विभिन्न मुद्दे और मांगों को लेकर के सारे लोग यहाँ इस यात्रा पर निकले थे, उनमें से एक एक मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा हुई है और उनमें से अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनी है, बातचीत हुई है।
भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान क्रांति यात्रा 23 सितंबर को हरिद्वार से शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को इसे दिल्ली के किसान घाट पर पूरा होना था। किसान विभिन्न मांगे लेकर दिल्ली आ रहे थे, जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमत जैसे मुद्दे शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और किसान अभी भी दिल्ली की सीमा पर रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रतीकात्मक रूप से आज राजघाट जाने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे।
जो किसान वहाँ से आए अपने घर से, वो हम राजघाट जाएंगे। अब किसान यहाँ से बीच से वापसी चले जाएगा, पीठ भी दिए और पीठ के वापसी भेज दिए। देखो किसान जाएगा राजघाट, राजघाट पे इसका समापन करेगा, आगे जाएंगे प्रशासन को बता, बातचीत चल रही है उनसे और ट्रैक्टर ठीक होने लग रही जो थोड़े, तो राजघाट चले जाएंगे। मार्च खत्म हो गया हमारा, हम शांति से वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे समापन कर अपने घर चले जाएंगे।
भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि वो अपनी पूरी मांगे केंद्र सरकार से मनवाएंगे। राजनाथ सिंह ने उनकी क्या क्या मांगे मानने का आश्वासन दिया है, इस सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा,
देखो कई चीजों पर सहमति बनी है इनसे। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर को मनरेगा से जोड़ेंगे, एक ये है कि SRP उसके फसलों के रेट भी बढ़ाएगा, ये भी उन्होंने कहा। जो ट्रैक्टर थे 10 साल पुराने, उन्हें ट्रैक्टर को भी उन्होंने कहा कि हम इसको भी बहाल करवाएंगे कोर्ट के माध्यम से। जंगली जानवरों का सहायक मामला, उसकी भी बात हुई है। बहुत से सवाल है, कुछ हुए भी कुछ नहीं हुए, कुछ आगे चलते रहेंगे आंदोलन।
किसानों पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां छोड़े जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया भी दी। महाराष्ट्र के वर्धा में कल कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, उस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार को अहंकारी सरकार बताया।
हजारों किसान जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के द्वार आए थे, उनकी पीड़ा की हुंकार और व्यथा की चित्कार सुनने की बजाय अहंकारी और क्रूर मोदी सरकार ने उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई।
किसानों पर बल प्रयोग करने पर कल शाम दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उसका कहना था कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने किसानों को दिल्ली में इसलिए दाखिल नहीं होने दिया क्योंकि वे यहां ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी के रूप में लोगों को भरकर लेकर आ रहे थे, जिस पर दिल्ली में रोक लगी हुई है। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
जस्टिस रंजन गोगोई आज सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। श्रोताओं, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका के भीतर फैली अव्यवस्था की बात की थी। इनमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, यही सवाल हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के कुलपति फैजान मुस्तफा से पूछा।
ऐसा है कि ये एक सक्सेशन स्कीम है कि चीफ जस्टिस की एज जब 65 हो गई तो नया चीफ जस्टिस नंबर 2 टेक ओवर करता है। तो थोड़ा सा इसमें ये माना सोचा जा रहा था कि अगर रंजन गोगोई साहब को नहीं बनाया जाता तो क्या तीसरी बार सुपर सेशन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने ये अच्छी बात की कि उनका नाम रिकमेंड किया और सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कोई इसमें ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, एक रूटीन सक्सेशन है जो ये हो रहा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। अब इन जजमेंट्स के बाद कोई ऐसे बड़े मैटर्स जो हैं इस वक्त मुझे नहीं नजर याद आ रहे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अगले चंद महीनों में आने वाले हैं, सिवाय इसके कि गगोई साहब की अपनी बेंच जो है वो एनआरसी आसाम का मैटर सुन रही है और उनको उसमें एक ऐसी 5 जज बेंच भी बनानी है जो उस लॉ की सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप एक्ट का, जिसके तहत ये तो पूरी एनआरसी बन रही है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करेगी। दूसरा ये बड़ा मुद्दा कि अभी ये जो बाबरी मस्जिद वाला मैटर था उसके बारे में बेंच ने कहा कि 29 अक्टूबर से हियरिंग होगी। चीफ जस्टिस गगोई इससे बाउंड नहीं है, वो इसकी हियरिंग अपनी मर्जी से कभी भी लगा सकते हैं। उनको इस बेंच में अभी एक और जज को ऐड करना है, वो चाहें तो उसको फौरन कर सकते हैं। तो इमीडिएटली कोई ऐसे बड़े मैटर्स नहीं लगे, लेकिन जितना मैं जस्टिस गगोई को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी काम है कि उनके यहाँ जो बहुत सी 5 जज बेंच के मैटर्स लगे हुए हैं उनका डिस्पोजल और अपील्स का डिस्पोजल की तरफ वो ध्यान देंगे। ये जो एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह कुछ केसेस के 377 और अडल्ट्री पिक कर लें और उसे जल्दी जल्दी डिसाइड कर दें, वो शायद इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। तीसरी चीज ये कि क्योंकि जस्टिस गगोई खुद उस फेमस 11 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, तो ये भी देखा जाएगा कि वो कैसा रोस्टर बताते हैं, क्या वो सीनियर्स को बेंचेस बनाने में वो अहमियत देते हैं जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने उनको नहीं दी। तो ये चंद चैलेंजेस उनके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इधर इंडिविजुअल्स के राइट के बारे में तो कई बातें कही और जजमेंट दिए, लेकिन ग्रुप राइट्स के सिलसिले में वो बातें उतनी सफाई से और उतनी फर्मली नहीं आ पाई। और ये पूरा मामला के आधार के कई मैटर्स ऐसे हैं जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है वो दोनों एक हैं, तो वो मैटर कैसे ये पूरा डेटा जो प्राइवेट कंपनीज के पास है डिलीट किया जाएगा, इसके सिलसिले में क्लैरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने ये मैटर फिर से पहुंचेगा।
आप सुन रहे थे कानूनविद फैजान मुस्तफा को, और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सवर्ण आंदोलन के कारण चर्चा में आने वाले सपाक्स संगठन ने सपाक्स समाज पार्टी बना ली है। ये पार्टी प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संगठन के कार्यक्रमों में भीड़ भी अच्छी खासी जुट रही है। स्थानीय पत्रकार शुरह नियाजी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर सपाक्स पार्टी के चुनाव मैदान में आ जाने से मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ सपाक्स अब पार्टी बन गई है। भोपाल में मंगलवार को पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी का नाम सपाक्स समाज पार्टी रखा गया है। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हो रहे विवाद के बाद सपाक्स चर्चा में आई और भारत बंद का सफल आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी को बनाया गया है। पार्टी अपने आप को सवर्ण समाज के लोगों के साथ होने का दावा कर रही है। वहीं इनका यह भी दावा है कि 70 से ज्यादा सवर्ण संगठनों का समर्थन उन्हें हासिल है। हीरालाल त्रिवेदी ने बताया,
देखिए आज से औपचारिक रूप से सपाक्स पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है, घोषणा पत्र समिति भी हमारी बन गई है और बहुत जल्दी जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और सभी 230 सीट पे चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन सपाक्स के इस फैसले से चुनावी समीकरण बदलने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश की मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही मानना है कि किसी भी तरह से पार्टी पर सपाक्स के उतरने का कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं,
कांग्रेस और किसी राजनीतिक दल पर तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज पर असर पड़ेगा। समाज विभाजन की ओर धकेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सप्रयास, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस माध्यम से समाज को आमने सामने खड़ा करने की चेष्टा कर रही है।
वहीं भाजपा भी इस मामले को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी।
तो उस नाते अगर सपा ने पार्टी बनाई है तो स्वागत है, लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं हुआ करते हैं और चुनाव के अपने अलग मुद्दे, प्रत्याशी, विकास, सुशासन, नेतृत्व, सरकार बनने की संभावनाएं, ये तमाम प्रकार की बातें असर करती हैं पूरे चुनाव के दौरान।
राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर कहते हैं कि सिर्फ पार्टी बना लेना काफी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए संगठन बहुत जरूरी है जो इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता है।
सवाल ये है कि आपका संगठन राजनीतिक रूप से कितना तैयार है, ये महत्वपूर्ण है। जब तक राजनीतिक रूप से तैयार नहीं होगा, चुनाव लड़ने के लिए पूरा एक संगठन चाहिए। यदि मान लो सेंटीमेंट्स आपके साथ भी है, उसको चुनाव के लिए तैयार करना, वो मैकेनिज्म तैयार करना है ना, वो बहुत मुश्किल काम है।
सपाक्स के मैदान में आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। पार्टी में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और साथ देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि दो महीने तक पार्टी को इस तरह की गति बनाए रखना आसान नहीं है। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
पंजाब पिछले कई सालों से नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में राज्य में कुछ अलग अलग आवाजें उठने लगी हैं कि क्यों ना अफीम की खेती, बिक्री और इसके सेवन को कानूनी रूप से वैध कर दिया जाए। कुछ लोग इस सुझाव का विरोध भी कर रहे हैं। सुनिए इस पूरी बहस पर चंडीगढ़ से अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट।
ये हैं आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी, जो अफीम की खेती, बिक्री और सेवन को कानूनी रूप से वैध करने की वकालत करते आ रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा खत्म करने के लिए कई कदम उठाए, पर नशे की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है।
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है,
जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर शराब के मामले में पंजाब है, यहाँ पर शराब खुले तौर पर मिलती है। दूसरी ओर भुक्की और अफीम का सेवन करने वाले लोगों को छिपना पड़ रहा है। करीब 20,000 छोटा मोटा नशा करने वाले लोग जेलों में बंद हैं।
पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी की मांग का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे मादक पदार्थ हेरोइन से कई गुना बेहतर बताया।
बहुत सियाणी गल कर रहे हैं धर्मवीर गांधी जी,
बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी। मेरे ताया जी दवा के रूम में अफीम का सेवन करते थे और उन्होंने लंबी उम्र जी है।
अस्पताल तो पर्ची लेके अफीम भी वो लेके आंदा हुंदा सी।
पर कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि ये बात गलत है कि देश के कुछ राज्यों में अफीम की खेती कानूनी है और बाकी राज्यों में गैर कानूनी।
मैं साल 2002 से ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि भारत को एक ड्रग्स नीति की जरूरत है। ऐसा नहीं चल सकता कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम पैदा की जाए और पंजाब को इसका बाजार बनाया जाए।
उधर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा मानते हैं कि अगर बिना सोचे समझे अफीम को वैध किया जाता है तो ये राज्य के लोगों को अंधकार में धकेल देगा।
इस तरह की कच्ची बात करने का कोई फायदा नहीं, सरकार इस मामले पर अपनी नीति स्पष्ट करे। इस मुद्दे पर बयानबाजी राज्य के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भड़काने की कोशिश है।
पंजाब की नशे की लत के बारे में अध्ययन करने वाले पीजीआई चंडीगढ़ के डी एडिक्शन सेंटर के डॉक्टर देवशीष बसु कहते हैं कि वे अफीम की खेती और सेवन की मांग का समर्थन नहीं करते। वहीं अमृतसर के डी एडिक्शन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर पीडी गर्ग ने भी अफीम को वैध करने की मांग को खारिज करते हुए कहा,
इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। कैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, लोग फिर खुलेआम से नशा चलेगा, खुलेआम से नशा चलेगा तो नशा जो है, नशा तो फिर नशा ही है ना।
जाहिर है कि राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की अफीम की खेती और बिक्री को लेकर राय अलग अलग है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी मांग जोर पकड़ रही है और पहले से ये अधिक चर्चा का विषय बनी है, लेकिन इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक सरकार इस संबंध में कानून में संशोधन ना करे। क्या कभी ऐसा होगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी चंडीगढ़।
और अब अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में हैं गुरप्रीत सैनी। गुरप्रीत, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर एक तस्वीर दिख रही है जिसमें कि किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है बैरिकेड से, पानी की बौछारों से, रबड़ की गोलियों से। ये तस्वीर सभी अखबारों में लगभग दिख रही है।
जी, ये जो वैशाली गाजियाबाद में जो दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जब किसानों को रोका
जी
गया।
जी बिल्कुल। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस अगर देखें तो उसमें रूस के राष्ट्रपति गुरुवार को 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसके अलावा जनसत्ता अगर हम देखें तो उसमें एक खबर दिख रही है जिसमें कि मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि विपक्ष भी नहीं राम मंदिर का विरोध विपक्ष भी नहीं कर सकता। TOI की हेडलाइन है इसी से रिलेटेड कि राम मंदिर किसी भी कीमत पर बनकर रहेगा, ये उन्होंने कहा है, मोहन भागवत ने कहा है, RSS प्रमुख ने। इसके अलावा जनसत्ता में ही एक और खबर दिख रही है कि एक मुस्लिम परिवार के 13 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। ये खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में है और पुलिस के रवैये से नाराज एक मुस्लिम परिवार ने कथित रूप से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हिंदू युवा वाहिनी की देखरेख में मंगलवार को धर्मगुरु ने हवन कराकर 13 लोगों को विधिवत रूप से हिंदू धर्म स्वीकार कराया
जी।
इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर दिख रही है कि कल दिल्ली में कि कोलकाता में मंगलवार को बम ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 9 लोग उसमें घायल हुए हैं। ये जो इमारत में जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पे TMC के एक नेता का दफ्तर और आवास था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। बढ़ते हैं आगे। असम की नागरिकता रजिस्टर का दूसरा ड्राफ्ट आए 2 महीने हो चुके हैं। अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि जिन लोगों के नाम NRC से बाहर रह गए उनमें हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है। इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दूसरी ओर मूल असमिया लोग भी किसी भी तौर पर बाहरी लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। असम के तिनसुकिया से BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की यह रिपोर्ट सुनिए।
म्यांमार बॉर्डर के पास बसे सायनाकी गांव में चाय की पत्तियां तोड़ते आदिवासी मजदूर, इनमें लोखी घटवार भी हैं।
NRC में नया आया है कुछ, खाली पैन कार्ड है, राशन कार्ड है।
NRC में नाम ही नहीं आया है, खाली पैन कार्ड और राशन कार्ड है, वोटर कार्ड भी मालिक के पास है।
लोखी को मालूम नहीं उसके बाप दादा मूलतः कहाँ के थे, लेकिन उसकी माँ सावित्री जानती है।
बाबा आए रहे दुमका जिला से, वहीं धावला में मोर नाम जात रहे।
हमारे बाबा दुमका से आए थे, खाली वोटर लिस्ट में नाम है, धौला से यहाँ आए तो वो भी कट गया।
सावित्री के पूर्वज और दूसरे आदिवासी झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से 1826 के बाद लाए गए थे, जब असम ब्रितानियों के कब्जे में आया और चाय की खेती शुरू हुई। लेकिन ऐसे हजारों लोगों के नाम NRC में नहीं, न ही उन लाखों लोगों का नाम इसमें शामिल हुआ जो बिहार, UP जैसे सूबों से ग्रो मोर फूड के नाम पर यहाँ लाए गए थे।
चिंता तो बहुत है सबको, चिंता के बात मत पूछिए, चिंता तो बहुत है। कोई जिसका बिहार पे है वो बिहार डॉक्यूमेंट्स लाने जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है।
जहाँ पे कोई रेजिमेंट पार नहीं कर सकता है, जो वार को नहीं जीत सकता है, वहाँ पे हमारे गोरखा रेजिमेंट को खड़ा कर दिया जाता है। हमें सिर्फ मरने के लिए ही रेडी किया जाता है, हमें ऐसा लगता है।
हाय, तो हम तो बिहार का ही है, कोई दूसरा जगह का तो है नहीं, तो हम तो 80 में आए हैं और कहाँ से हमारा पास कागज होगा 65-70 का।
इनके अलावा हैं असम में रह रहे बांग्ला भाषी, कुल मिलाकर 20 से 22 लाख हिंदू NRC से बाहर बताए जा रहे हैं। इसने हिंदू हितों की बात करने वाली BJP के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जो एक समय तो दावा कर रही थी कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी तो वो असम समझौते को लागू नहीं करवा पाई, उसमें हिम्मत है तो उसने NRC शुरू करवा दिया। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल और दूसरी जगहों पर भी NRC की बात करने लगे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाने वाले राम माधव कह रहे हैं कि फिलहाल इसे असम से बाहर करवाने को लेकर कोई सोच नहीं है। इधर तिनसुकिया के तिराव गेट के अपने कार्यालय में हेडगवार, गोलबलकर और शिवाजी की तस्वीरों से घिरे बैठे चंद्र प्रकाश जायसवाल समुदाय के लोगों की चिंताओं की बात करते हैं।
अभी जो राशन का चावल उन लोगों को मिल रहा है 3 रुपए KG का,
वोटर लिस्ट में नाम अभी तक है, साथ ही आपका जो आई वाई घर ऐसा अगर अपना माटी वगैरह है तो जो भी सरकारी सुविधा उन लोग को जो मिल रहा है, लेकिन कल का डेट में जब NRC से नाम कटेगा और जब उन लोग को वो सामाना नहीं मिलेगा तब उन लोग लाचार होगा, आने वाला समय तो बहुत डरावना समय।
चंद प्रकाश जायसवाल कहते हैं नागरिकता रहित हो गए ये लोग बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकेंगे, न ही वो जमीन जायदाद ले पाएंगे, जातीय प्रमाण पत्र तक बना पाना उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर कौस्तुभ डे का NRC को अंग्रेजों के जाने के बाद की बड़ी त्रासदियों में से एक बताते हैं, जिसकी कई परतें अभी खुल ही रही हैं।
इसने सभी लोगों को असमंजस में डाल दिया है, ये एक तरीके की पहेली बन गया है या लोगों को राजनीतिक कश्मकश में डालने वाला एक मुद्दा। इसके जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उसकी वजह से कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है।
ये थे राजनीति शास्त्र के शिक्षक कौस्तुभ डेका। BJP की कश्मकश ये है कि वो चाहकर भी नागरिकता संशोधन बिल पर लोगों को राजी नहीं कर पा रही, जिसके आने से दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी। मशहूर पत्रिका प्रांतिक के संपादक प्रदीप बरुआ।
एनीबॉडी कम एंटरिंग इंडिया, नो मैटर व्हेदर इज हिंदू और मुस्लिम,
जो बाहरी लोग भारत में घुसे हैं वो चाहे हिंदू हों या मुसलमान, मंजूर नहीं है। BJP इसे पसंद करे या ना करे, ये असमियों की भावना है।
ये थे प्रदीप बरुआ के शब्द। राज्य सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने की बात कही है, साथ ही बॉर्डर पुलिस को नए मामले फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में भेजने से रोक दिया गया है। इन सब के बाद अगर NRC में कुछ संगठनात्मक बदलाव होते हैं तो उसकी कार्रवाई धीमी पड़ सकती है। कौस्तुभ डेका कहते हैं BJP अब मूल निवासियों को विशेष अधिकार देने के मामले पर विचार कर रही है।
So there is an attempt, or maybe they are thinking in some way.
उन्हें ये एहसास है कि सिर्फ धार्मिक भेदभाव की बात करके असम में फायदा नहीं उठाया जा सकता, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सूबे के मूल अधिकारों को खास अधिकार देने की बात की शुरुआत की जाए।
हालांकि असम जहां सदियों से दूसरी जगहों से लोगों का आना जारी रहा है, वहां मूल निवासी किस आधार पर चिन्हित किए जाएंगे ये भी कुछ नए सवाल खड़े कर सकता है। फैसल मोहम्मद अली, BBC, तिनसुकिया, असम।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी चैंपियंस लीग फुटबॉल से। आज मुकाबला होगा ग्रुप बी के टोटनहैम हॉटस्पर और बार्सिलोना के बीच, दूसरी तरफ ग्रुप सी के नापोली और लिवरपूल के बीच। और अब बात भारतीय फुटबॉल टीम की। AFC अंडर 16 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय फुटबॉल टीम को हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में हुए पेटालिंगजे स्टेडियम में दक्षिण कोरिया से भारतीय टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के साथ भारत को पेरू में होने वाले अंडर 17 विश्व कप में क्वालिफाई करने का सपना टूट गया है। 16 साल बाद इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खेल रहे भारत ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन कोरिया की टीम को जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाई। भारतीय टीम ने हालांकि इस मैच में अपनी विपक्षी टीम को कड़ी टक्कर दी और उसे कभी भी आसानी से गेंद अपने पास रखने का मौका नहीं दिया। भारतीय गोलकीपर नीरज कुमार ने कई शानदार बचाव करते हुए दक्षिण कोरिया को रोके रखा, लेकिन वो एक दफा चूक गए और दक्षिण कोरिया के लिए वो विजयी पल साबित हुआ। 14वें मिनट में नीरज ने शानदार बचाव करते हुए दक्षिण कोरिया को बढ़त लेने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने 34वें और 36वें मिनट में दो और शानदार बचाव किए।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। न्यूयॉर्क के कर अधिकारियों का कहना है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 1990 में अपने परिवार को लाखों डॉलर की कर चोरी करने में मदद की थी। रूस ने नेटो में अमरीका की दूत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका रूस के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर सकता है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आए सुनामी और भूकंप को 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी बचाव टीमों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आपदा में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।